जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम चंद्र की जय विजिट थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी 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 शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरे नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्ण ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरी हरि बोल एवरीवन हरी हरि बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो पहले तो फ्रेंड्स हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो अपने विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को ठीक से समझ सकें और अपने जीवन में भी उतार सके, है ना। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हो चुका है हमारा, है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। और भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ने से पहले थोड़ी हमारी तैयारी होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, है ना। उससे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मिसकंसेप्शंस जो होती है हमारी भक्ति को लेकर स्पिरिचुअलिटी को लेकर वो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं हमारी, है ना। और जो गोलोक एक्सप्रेस के कुछ बेसिक मॉडल्स हैं उनको समझने से इजी हो जाता है हमें कि डिवोशन का मतलब क्या होता है, भक्ति का असली रियल मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है और इसपे समय कैसे बनाना है। इससे क्या होता है कि हमारे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना, सतोगुण की वृद्धि होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बातें अंदर जाना शुरू कर देती है, श्रद्धा बढ़ जाती है परमात्मा में। फिर क्या होता है, फिर जो हम भगवद गीता के श्लोक शुरू करेंगे वो समझना भी शुरू हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा अपने आसपास कि लोग भगवद गीता तो पढ़ रहे होते हैं, 3-4 बार स्टडी कर रही होती है उन्होंने, है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता है ना। तो जो ये मिसकंसेप्शंस है या जो मॉडल्स है ये हमारी बुद्धि को शार्प करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं कि हम भगवद गीता को ठीक से समझ सके और इस कोर्स को अपने जीवन में अपना सके। हमने समझा था कि कंप्लीटली हैप्पी होने के लिए हमें कंप्लीटली हेल्दी होना पड़ता है और कंप्लीट हेल्थ के 5 कंपोनेंट्स हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ में हमें बैलेंस लाना होता है ना। और स्पिरिचुअल हेल्थ सारी हेल्थ कंपोनेंट्स का बेसिक रहेगा ताकि हमारी सारे हेल्थ के कंपोनेंट्स पे हम वर्क कर सके ठीक से। इस कनेक्शन को स्ट्रोंग करने के लिए हमें सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पे चलना पड़ता है ना। स्पिरिचुअलिटी के 4 स्तंभ है, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ जो कि है सत्संग साधना सेवा सदाचार। इस रास्ते पे चलने पर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ इम्प्रूव होती है। और सत्संग के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, साधना के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं और कल हमने सेवा के बारे में बात की थी। मतलब हमने समझा था कि सेवा मतलब सबके बारे में निस्वार्थ भाव से भलाई से कार्य करना, ये समझते हुए कि हम निमित्त मात्र है। सेवा तन से मन से धन से हर तरह से कर सकते हैं, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं हमें, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जगह अगर हम छोटे छोटे काम करें तो ज्यादा बेटर है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम क्या सोचते हैं कि खाली पूजा पाठ करना ही भक्ति है और किसी की मदद करना भक्ति नहीं है, इस तरह से भक्ति को नहीं देखना फ्रेंड्स। 2 टाइम की भक्ति के कॉन्सेप्ट से हमें बाहर आना है। ये सारी जुड़ी हुई चीजें हैं क्योंकि भगवान के CCTV कैमराज हर जगह है। उस समाज में हमें ऐसे डिवोटी बनना है जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं, भगवान के दर्शन सिर्फ मंदिरों में ही नहीं करते, है ना। जब गरीबों से डील करते हैं तब भी भगवान के आपको दर्शन होने चाहिए। कैसे हम उनसे बात करते हैं, कैसा कंडक्ट है हमारा, कैसे हम उनसे डील करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में एक और मॉडल बताया गया है फ्रेंड्स जिसका नाम है विचार आचार और प्रचार, जिसको कि इंग्लिश में कंटेम्पलेट इम्प्लीमेंट और प्रीच भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे जो कि सेवा से ही रिलेटेड है क्योंकि हमने कल किया। देखो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति सच में किसी की हेल्प करना चाहता है ना, चाहते तो बहुत सारे लोग हैं दूसरों की मदद करना, पर कर क्यों नहीं पाते। देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम बोलते तो हैं, हम बोलते रहते हैं घर पे या बाहर, पर हमारी बात ही कोई नहीं सुनता, है ना। तो ऐसे फीलिंग्स क्यों आती हैं एक इंसान को कि वो बात करता है बट कोई सुनता ही नहीं है। तो इस मॉडल से हम समझेंगे कि क्यों कोई नहीं सुनता है, इवन हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमारी नहीं सुनते, है ना। तो प्रचार मतलब जब आप किसी को कोई बात बताते हो, समझाते हो और दूसरों की लाइफ आपकी बात से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये तो हो गया प्रचार। क्या बताया मैंने, प्रचार, जब आप किसी को कोई बात बताते हो मतलब समझा रहे हो आप कोई बात, है ना, और दूसरों की लाइफ आपकी बातों से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और प्रचार पर पहुंचने से पहले हमें ये दो स्टेप्स करने बहुत जरूरी होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लोग 99.9% ये पहले दो स्टेप ही नहीं करते हैं। पहला स्टेप है विचार। देखो फॉर एग्जांपल आप सत्संग लगा रहे हो, 6 महीने से आप सत्संग लगा रहे हो, है ना, या मैं लगा रही हूँ मान लो सत्संग, है ना। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हम जो सत्संग से सीख रहे हैं उस पर हमें चिंतन करना है, विचार करना है कि हमने क्या सीखा, अभी तक हम क्या करते आए थे, सत्संग से पहले हम क्या करते आए थे, क्या लाइफ थी हमारी, क्या सही जीवन जी रहे थे हम, ये हमने सोचना है। क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे सत्संग सुनने से पहले, या हमें डायरेक्शन बदलने की जरूरत है, है ना। और ये जो हम भगवद गीता के थॉट प्रोसेस सीख रहे हैं ना, भगवत गीता से क्या होगा, कोई चमत्कार थोड़ी होने वाले हैं हमारी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में या आपकी जिंदगी में। आपको लगता है कि मैं भगवत गीता पढ़ के भगवान को खुश कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसे आज हो वैसे ही रहने वाले, सिर्फ होगा क्या, आपका जो सोचने का नजरिया है ना वो ही बदल जाएगा, अंदर से आपका कंडीशनिंग बदल जाती है। हमारी कंडीशनिंग होती है ना फ्रेंड्स, बचपन से हमारी कंडीशनिंग हो रही है ना, हमारे जो अपब्रिंगिंग से, है ना, किस माहौल में हम पले बड़े हैं, हमारे जो लाइफ सिचुएशंस थी, है ना, अपने पेरेंट्स से, आसपास के जो 10-15 लोग होते हैं उस माहौल से हमारी कंडीशनिंग हुई होती है बचपन से लेकर आज तक, जो एक नेचर बन जाता है हमारा, जो आज है हमारा जो नेचर, है ना, उस कंडीशनिंग की वजह से एक नेचर बन जाता है ना। तो हमें ये समझना है कि भगवद गीता पढ़ने से पहले क्या मेरी लाइफ की डायरेक्शन सही है, या मुझे उस डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। और ये जो हम भगवद गीता का कोर्स हमने ज्वाइन किया है, ये जो थॉट प्रोसेस हम सीखेंगे, ये हमें आगे कहाँ तक लेकर जाएगा और हमारे लाइफ में इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में फोकस करना चाहिए एक व्यक्ति को, है ना। तो पहला स्टेप है विचार। क्या स्टेप है, पहला विचार, जहाँ पे मोस्टली लोग गड़बड़ कर देते हैं, है ना। अब आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो, मान लो आपने सत्संग ज्वाइन किया, है ना, आप यहाँ से कुछ सीख रहे हो, पहले इसका मंथन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, इसलिए मत सुनो कि टाइम पास हो जाता है, टाइम पास के लिए सत्संग मत ज्वाइन करो, है ना। कई बार लोग क्या सोचते हैं, चलो यार फ्री का सत्संग है, मेरा क्या लग रहा है, चुपचाप लगा लो और सोए रहो, है ना, लेट जाओ, सो जाओ, नींद आती है तो सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स टाइम पास तो वैसे भी हो ही जाएगा, आप सत्संग नहीं भी ज्वाइन करोगे तो, बट टाइम पास नहीं है ये सत्संग, मनोरंजन नहीं है सत्संग। अटेंड करना मतलब भगवान की विशेष कृपा है, है ना। ये हमने भगवत गीता वाला जो सत्संग अटेंड किया है ना, सच में ये भगवान की विशेष कृपा होती है जो हमें ये वाले ऐसे सत्संग मिलते हैं, जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में विशेष योगदान देते हैं, है ना। ये आत्म सुधार का रास्ता होता है फ्रेंड्स, है ना, भगवान की विशेष कृपा होती है जब हमें ये रास्ता मिलता है। और इसमें कड़वाहट भी होती है फ्रेंड्स, मतलब सत्संग अटेंड करने में सब अच्छा अच्छा ही नहीं होता, इसमें हमें कड़वाहट भी लेनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता क्या है, सत्संग के माध्यम से हमें ना अपने अंदर की गंदगी दिखेगी, अपनी कमियां दिखने शुरू हो जाती है। देखो जो भी बातें आप सत्संग में सुनते हो ना, मतलब आपने नॉर्मल सोचा कि ठीक है यार, जैसे मैं मंदिर में सुनती हूँ सत्संग, किसी घर जा रही हूँ, बचपन से हम जा रहे हैं, ये सब सत्संग हम सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं ना, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। आपने सुना और भूल गए, घर आके फालतू निंदा चुगली में पड़ गए, उसने क्या पहना था, वहां पे क्या खाना खाया मैंने, या क्या नेगेटिव सोचा वहां पे, कुछ नहीं बदलेगा अगर आपने यही थॉट प्रोसेस रखा तो अपनी लाइफ में। और होता क्या है, कड़वाहट क्यों आती है इस रास्ते में, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आपको अपने अंदर की गंदगी दिखेगी, अपनी कमियां दिखेंगी कि कहाँ गड़बड़े करती हूँ मैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं कहाँ पे गुस्सा करती हूँ, कि कितना गुस्से वाला नेचर है मेरा, मैं छोटी छोटी बातों पे भड़क जाती हूँ, है ना, दूसरों की बात सुनने का मेरे में पेशेंस ही नहीं है, मुझे क्या लगता है मैं ही सही बोल रही हूँ, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनते ही नहीं है, कंपैरिजंस में घुसी रहती हूँ, लालच में पड़ी रहती हूँ, दुनिया भर का अहंकार है हम में, है ना। तो इस तरह की कमियां हमें दिखने शुरू होती है, जो अंदरूनी जो नेगेटिव विकार होते हैं ना फ्रेंड्स, काम क्रोध लोभ मोह लालच, है ना, ये सब हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, है ना। और भी कई बातें, जैसे कि आप सत्संग में देखते हो कई लोग बड़े आराम से रिव्यूज दे रहे होते हैं, है ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यार मैं तो बात ही नहीं कर पाती, है ना, और यहाँ पे कई लोग तो बिल्कुल पहले दिन ही बात कर लेते हैं, है ना, तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी और कॉम्प्लेक्स भी आएगा यार मैं क्यों नहीं कर पाती, है ना, तो वो सोचेगा कि मेरे अंदर भी क्या कोई बदलाव आएगा या मैं अभी बहुत पीछे हूँ, और फिर गिल्ट भी आएंगे इस रास्ते में चलते चलते, क्योंकि जब नॉर्मल सत्संग भी चल रहे होंगे, कुछ नॉर्मल बातें भी चल रही होंगी, तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे ही बता रहे हैं, है ना, किनको कैसे पता, है ना, और जो सत्संग कर रहा होता है उसको तो वो तो जानता ही नहीं है किसी के बारे में भी, है ना, क्योंकि ये सब भगवान की डिवाइन प्लानिंग होती है फ्रेंड्स। आपको सारी जो जवाब होते हैं ना, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं सत्संग में, जो आपने कभी पूछे ही नहीं होते, जो आपके माइंड में कभी होंगे कभी, है ना, जो कमियां हैं हमें, जो हम गलतियां करते हैं, वो सत्संग के माध्यम से हमें पता लगना शुरू हो जाती है, यार ये कमी तो मेरे में भी है, ये गलती तो मैं भी करती हूँ, है ना। क्योंकि देखो फ्रेंड, जब समुद्र मंथन हुआ था ना देवताओं और दानवों के बीच में, तो सबसे पहले ऋषि निकलता है। तो जब आप घर और बाहर की पॉलिटिक्स में बिजी थे या निंदा जुगली करने में बिजी थे कि उसने क्या किया, लालच में फंसे हुए थे, जब सत्संग सुनते रहोगे ना, तो आप मजबूर हो जाओगे कि क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए, क्या मुझे निंदा करते रहना चाहिए, है ना, जो अपनी गलत हैबिट्स है उनके बारे में चिंतन होना शुरू हो जाता है, कि या मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, क्या मुझे आत्म सुधार के बारे में सोचना चाहिए, क्या मुझे इस तरह से बात करनी चाहिए जैसे मैं अपने क्लोज लोगों से बात करती हूँ, क्या मुझे अपने एम्प्लॉयज से, अपने हेल्पर्स के साथ ऐसे डील करना चाहिए जैसे मैं करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, सत्संग में बात ये नहीं हो रही होती कि आप दूसरों के साथ कैसे हो, है ना, बात ऐसे हो रही होती है कि आप अकेले में क्या सोचते हो, है ना। जब हम किसी से मिलते हैं तब तो हम बहुत अच्छा अच्छा ही अपने आप को दिखाएंगे ना, कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब अपने बारे में सब अच्छा अच्छा ही हम दिखाते हैं सब लोग। लेकिन अकेले में जब हम अपने साथ होते हैं या घर में अपने एक दो लोगों के साथ होते हैं, तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है हमारा, या अपने साथ क्या बातें कर रहे होते हैं हम। अपने सेल्फ टॉक सुना करो कि हम अपने आप से क्या बातें करते हैं, अपने सेल्फ टॉक पे चिंतन करना है फ्रेंड्स, है ना। तो सत्संग सुनने के साथ साथ अपनी जीवन जीने की शैली पर गहराई से मथना है, ऐसे सुपरफिशियल तरीके से नहीं करना है सत्संग। हो गया सत्संग, 4 बजे था, 5 बजे खत्म हो गया, बस हो गया। देखो सत्संग होने के बाद थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड, सीधी बात है ना, ये नहीं कि 1 घंटा सत्संग करना है बाकी का मन गणन जीवन जीना है अपना। नहीं समझ आया दोबारा सुनो, जाओ स्काइप पे सुनो दोबारा से, जब रिकॉर्डिंग आती है तो सुनो, पॉडकास्ट पे बार बार सुनो क्या बोल रहे हैं, नोट्स बनाओ। इसलिए नोट्स बनाने को मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स बनाया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जब कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो आप रिव्यूज भी दे पाओगे, आप सुन रहे हो, लेट के सुन रहे हो, सोच रहे हो बीच में, तो उससे क्या होने वाला है। अब जो नोट्स बना रहा होगा उसकी जो 70-80% प्रोग्रेस होगी, और जो लेट के सुन रहा है उसकी 20-30% प्रोग्रेस होगी, तो डिफरेंस आ गया ना फिर। और जो बाद में भी रिवाइज कर रहा होगा, बार बार सुन रहा होगा, तो उसकी कितनी प्रोग्रेस होगी सोचो, है ना। जैसे स्कूल में हम जाते थे पढ़ने के बाद, टीचर्स बोलते थे ना, आप घर जाकर रिवाइज करना भाई, होमवर्क करो, होमवर्क देते हैं, घर में लर्न करने को मिलता है, उससे क्या होता है, हमारा विचार और गहरा हो जाता है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, है ना, उससे फ्रेंड्स हमारे विचार बनते हैं। तो हमने गहराई से मथना है कि मैं क्या देखती हूँ, क्या सुनती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। फोन भी हाथ में है तो आप फोन में देखते क्या हो, क्या पढ़ते हो, क्योंकि सारी बातें हमारे अंदर जाएंगी ना, विचार बनेंगे। अब आपने देखा होगा कई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तो उनके लाइफ में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत कर ही रहे होते हैं ना, कि जो वो नेगेटिविटी उनके अंदर घुस जाती है, वो विचार उनके इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि जो भी वो निकालते हैं वो नेगेटिव ही होता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रोज कर रहे हैं, रोज एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो कंडीशनिंग होती है, जो पैटर्न बने होते हैं ना बचपन से हमें फ्रेंड्स, उसको ब्रेक करना पड़ता है। और जो सत्संग है, जो अच्छी बातें सुनना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, ये कंडीशनिंग को ब्रेक करने का काम करता है फ्रेंड्स, आपके पैटर्न्स को ब्रेक करता है, जो इतने सालों से हमने अपने कंडीशनिंग की होती है ना, अपने आसपास अपनी भी, वैसे ही हम अपने बच्चों की कर रहे होते हैं। पहले तो खुद की करते हैं, फिर हमारे बच्चों को वैसा बना देते हैं, क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं होता सही क्या है गलत क्या है। हमें क्या लगता है, जो हम कर रहे हैं वो सही है, बाकी जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। तो जैसे घर को गंदा देखकर फ्रेंड्स एक बड़ी हैवीनेस आती है ना, वैसे ही अगर अंदर प्रकाश नहीं है और फिर अंदर गंदगी दिखती है ना, अंदर तो प्रकाश है नहीं है, अच्छी बातें सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, अच्छा कुछ देखना नहीं है, है ना, मतलब ज्ञान का प्रकाश ही नहीं है कुछ अंदर, तो सत्संग से प्रकाश आता है फ्रेंड्स, है ना। तो पहले हमें अपने अंदर की गंदगी दिखती है, दिख जाता है सब कुछ, अगर आप सही से चल रहे हो तो सब कुछ अंदर का दिखता है कि मेरे अंदर तो ये भी कमी है वो भी कमी है ना। तो ये बात नहीं बिठा लेनी अंदर कि सिर्फ मुझे मजा ही आना है सत्संग में, है ना। तो जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है ना तो क्या एग्जाम के टाइम उसको स्ट्रेस नहीं आता? बिल्कुल उसको स्ट्रेस भी आएगा कि उसको लगता है कि भी मेरा तो बहुत बड़ा टारगेट है इस सब्जेक्ट में और मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है ना। अभी तो मैं सिर्फ सत्संग लगाते हुए मुझे 1-2 महीने ही हुए हैं और अभी तो मैंने मालाई करने शुरू हुई हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है सत्संग सुन करके सारी गंदगी मेरे अंदर है ना। तो एकदम सारी नेगेटिव चीजें सारी गंदगी हमारे सामने आने शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। अगर हम सिंसेरिटी से सत्संग लगा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, और कभी कभी फ्रेंड्स ये बहुत डिस्टर्बिंग भी हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, इससे तो अच्छा है कि हम सत्संग ही ना लगाएं, तो क्या हमें इग्नोर कर देना चाहिए ये बातें, है ना। ये वैसा होता है फ्रेंड्स कि मान लो आपने घर को बहुत देर से साफ ही नहीं किया है, मान लो 20-25 साल हो गए और घर बंद हुआ पड़ा है और आपने 20-25 साल बाद घर खोला और आपने झाड़ू मारने शुरू कर दिया तो धूल मिट्टी तो उड़ेगी ना। तो वैसे ही जब आप नए नए सत्संग साधना वाले रास्ते पे चलते हो तो मजा भी आएगा लेकिन बीच बीच में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी आएंगे क्योंकि अपने अंदर की कमियां दिखने शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। लेकिन आपको फेस करना है, हम सबको फेस करना है, भागना नहीं है उससे, है ना। आप जैसे कोई ऑफिस में प्रोजेक्ट डिलीवर करना हो उस वक्त तो टेंशन होती है लेकिन बाद में तो उसकी अप्रिसिएशन ही होती है ना, लेकिन बीच में उसको प्रेशर से गुजरना पड़ता है ना। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा ये फ्रेंड्स, आत्म सुधार का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। तो जो यहाँ से सब कुछ सीख रहे हो उसको गहराई से समझने की कोशिश करो। देखो कई लोगों ने गुरु धारण किए होते हैं लेकिन गुरु ने बोला क्या है उनको कुछ पता नहीं होता, बस किसी ने बोला कि गुरु धारण करना चाहिए हमें लाइफ में, गुरु धारण कर लिए लेकिन जो वो बोल रहे हैं उनको तो कभी सुना ही नहीं, वो चीजें तो कभी इम्प्लीमेंट की नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, सुनो समझो गहराई से कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, अपनी लाइफ से रिलेट करो कि आपको करना क्या है फिर, है ना, और क्या करना है। तो ये है पार्ट विचार का, बस पार्ट हो गया। जितना अच्छा विचार करोगे स्टेप वन, स्टेप टू क्या आएगा, आपने सुना आपको कुछ बातें अच्छी लगी, आप उन बातों को प्रैक्टिस में ले आए, है ना। आपको बातें अच्छी लगी सत्संग में, आपने समझा और सोचा किस तरह से इसको अपनी लाइफ में उतार सकती हूँ मैं, और आपने कोशिश की लगातार नित्य निरंतर, है ना। और जोर लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स अगर चेंजेस चाहिए लाइफ में, तो धीरे धीरे क्या होता है फिर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपकी पर्सनालिटी में, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम से आप निकलना शुरू हो जाओगे, शांत नदी जैसे हो जाओगे, है ना। आपके हाथ में सब कंट्रोल आ जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जैसे हमारी आदतें होती हैं उसके हिसाब से हम चले जाते हैं और वो आदतें कितने सालों से बनी हुई है, बहुत सालों से, तो वो आदतें क्या एक घंटे का सत्संग सुनकर चली जाएंगी? उसके लिए स्टेप ये है कि अपने माइंड को समझाना पड़ेगा सत्संग में। जब आपको बात सुन रहे हो सत्संग में, या तो आपका माइंड आपको बोल रहा है ना कि बात तो सही हो रही है, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें सब कुछ सही लग रहा होता है और मुझे पता भी है कि सही बोल रहे हैं और क्या गलत है ये भी मुझे पता है। तो सही को अपनी जिंदगी में उतारना है और गलत है मेरी आदतें, मेरी सोच, उसको बदलना है। सोच को सही करना है और सोच को फिर आदतों में बदलना, और सही के बारे में सोच के फ्रेंड बुद्धि हमारी स्ट्रांग होती है। उल्टी सीधी बातें सोच सोच कर फालतू मन ग्रहण जीवन जीने से क्या होता है, हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है फ्रेंड्स। जब सही का साथ देते हैं ना, सही के साथ खड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, तो अपने आप ही हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। बट सिंपल बात है कि पहला स्टेप है जो सत्संग वाली बातें, अच्छे थॉट्स मन में डालना। और फिर अगर आप सोचते हो स्टेप टू में कि यार जो बता रहे हैं वो सही तो बता रहे हैं और मुझे अपने जीवन में उतार भी लेना चाहिए इसको, कि जो बातें आपको सही लग रही हैं उसको अगर आपने जीवन में उतारा, अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, तो धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो जाता है फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशंस का। अब आप में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, जितनी जितनी आप में चेंजेस आएंगी उससे जो आपको खुशी मिलेगी ना, और मन को जो छोटी छोटी खुशी मिलती है ना छोटे छोटे प्लेजर्स के द्वारा, उससे वो लाख गुना बड़ी खुशी होगी। देखो आपके अंदर एक कमी है, मान लो मेरे अंदर एक गुस्से का संस्कार है, है ना, तो मैंने उसको ओवरकम कर लिया, तो अगर मैंने उस गुस्से को, उस कमी को ओवरकम कर लिया तो मुझे उससे खुशी ज्यादा मिलेगी, या उस कमी के अकॉर्डिंगली चलते जाऊंगी मैं तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी? किससे मिलेगी आपको क्या लगता है? कमी को ओवरकम करके खुशी मिलेगी ना फ्रेंड्स। सही काम करने का जो डर है उसको अगर हम कर लेते हैं तो मजा आता है। अब क्या आता है, अब सही चीजों में मन लग जाता है और किन्हीं और चीजों में मजा आने शुरू हो जाता है। पहले क्या आता था, छोटी छोटी गलत चीजों में मजा आता था, अब क्या आता है, छोटी छोटी सही चीजों में मजा आने शुरू हो जाता है, है ना। सच बोलने में मजा आना लग जाता है, 1000 लोग झूठ बोल रहे हैं और आप अकेले उनके बीच में सच बोल रहे हो, है ना। करना सब कुछ समझदारी से है, बुद्धि लगानी है ना। अब देखो आप कहीं मान लो मैरिज पे गए हो, है ना, मान लो एक फॉर एग्जांपल वहां पे एक ग्रुप है या दो ग्रुप है, मान लो वो अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार की चुगली निंदा कर रहे हैं, और आपने क्या स्टैंड ले लिया कि मुझे चुप रहना है यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं बोलना है किसी के बारे में। आपने क्या सोचा, करने दो मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब बातों। तो यहाँ से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है ना। फिर क्या होता है, फिर लगता है कि यार अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। अगर मैंने एक कमी को ओवरकम कर लिया तो हमें क्या लगता है कि मैं दूसरी कमी को भी ओवरकम कर सकती हूँ। फिर क्या होता है, ये लेवल बढ़ता जाता है। फिर उसके लिए अकेले भी कई बार रहना पड़ता है हमें, सब लोग एक तरफ होंगे और हम अकेले खड़े होते हैं, कई बार होता है तो भी लगता है यार ठीक है अकेले ही ठीक है, परमात्मा तो मेरे साथ है ना, हमें पता होता है कि कौन सी चीज सही है और परमात्मा किस जगह खड़े होंगे, है ना। तो स्टेप टू है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको आचरण में लाना, कोशिश करना उसको आचरण में लाने की, पूरी निष्ठा से प्रयास करना। 100% नहीं भी होगा फ्रेंड्स, इसकी टेंशन नहीं लेना। 100% कोई भी नहीं कर पाया। देखो बात ये हो रही है कि अगर हम 100% कर रहे थे निंदा चुगली या गुस्से का संस्कार, 100% कर रहे थे, कोई बात हम एकदम ओवर रिएक्ट करते हैं, अब हम क्या उसको 100% से 50% लेकर आए। अब हम सत्संग करते एक साल हो गया मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई लोग एक साल से जुड़े हैं, तो क्या हम उस गुस्से के संस्कार को 100 से 50% तक लेकर आए या नहीं, या निंदा चुगली करने का जो संस्कार था हमें, हम उसको 100% से 50% पर लेकर आए या नहीं। क्या मैं जो गलत काम कर रही थी वो घटे या नहीं, मेरी अच्छी आदतें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही, है ना। तो अच्छी आदतों का ग्राफ बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, और बुरी आदतों का ग्राफ घटना चाहिए। विचार से आपको पहचान आनी चाहिए कि बुरी आदतें क्या होती हैं और अच्छी आदतें क्या होती हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति अहंकार में होता है ना तो उसको लगता है मेरी आदतें अच्छी हैं, अपनी आदतें तो बुरी लगती नहीं हमें। तो विचार से हमें समझ आता है कि जो भी मेरे संस्कार है, गुस्से का संस्कार है, निंदा का संस्कार है, तो मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप विचार करके रिफ्लेक्ट करो कि कहां मैं गड़बड़ कर रही हूँ, है ना, और कब मैं किसके बारे में बात करती हूँ। क्या ये एक ही बार सोचना है, क्या मैं दिन में एक ही बार सोचना है, या हफ्ते में एक बार सोचना है, या महीने में एक बार सोचना, या चलते फिरते 24 घंटे हमारे दिमाग में ये विचार रहना चाहिए, या सत्संग के बाद भूल जाना है, एक घंटे का बस सोचना है और अच्छा मुझे निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, अच्छा मुझे गुस्से का संस्कार मेरे में तो बहुत ज्यादा है, कूट कूट के भरा हुआ, तो मुझे तो छोड़ना चाहिए इस संस्कार को, लेकिन सत्संग सुना उसके बाद भूल गए। इसलिए बार बार फ्रेंड्स बोला जाता है कि सिंसेरिटी से चलना है इस रास्ते में, सिंसेरिटी से चलना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, नोट्स बनाने हैं, बार बार उसको मंथना है। जैसे आज ये टॉपिक ही चल रहा है, इसके पॉइंट्स बना लो, 8-10 पॉइंट्स लिख लो, उसमें से पॉइंट उठा लो कि अच्छा यार मुझे इस पॉइंट पे मैं वर्क कर सकती हूँ, है ना। आज मुझे बताया गया कि सत्संग को खाली ऐसे नहीं सुनना है, लेट के नहीं सुनना है, मुझे बैठ के सुनना है, मुझे उसके नोट्स बनाने हैं, मेरे को रिव्यूज भी देने हैं, मेरा पब्लिक स्पीकिंग का स्किल अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होगी मेरी पब्लिक स्पीकिंग में। और सीरियसली हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है और सीरियसली उसको आचरण में लेकर आना है, तो हमें उसके बारे में चिंतन मनन करते रहना है फ्रेंड्स। चिंतन मतलब उसको प्रैक्टिकल बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करना, जो भी हमने सीखा, है ना, जो भी हमने सुना पढ़ा उसको अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करना, है ना। जैसे आपको सत्संग में एक पॉइंट भी अच्छा लग गया, आपने उसको अच्छे से उतार लिया अपने जीवन में, है ना। मान लीजिए आपने सोचा कि हमें निंदा नहीं करनी है, अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस ही वहां पे निंदा करने का होता है फ्रेंड्स। जो भी ग्रुप बन जाते हैं मैरिजेस में, या फोन कल्चर चल पड़ा है आजकल तो, है ना, तो हम क्या करते हैं वहां पे, दूसरों की बातें, निंदा चुगली करने का संस्कार रहता है। अब हमने लास्ट की कोई हमने अच्छी बातें, कोई भगवान को लेके कोई बातें की हों, या सत्संग को लेके कोई बात की है, या माला तुमने कितनी कर ली, है ना, ये बातें कब करते हैं, हम करते हैं सोचो, या जब तक हमने सत्संग ये ज्वाइन नहीं किया हुआ था उससे पहले क्या बातें करते थे हम लोग। अगर हम नेगेटिव नहीं होंगे तो हमारे जो फ्रेंड्स, हमारे जो रिलेटिव होंगे वो हमें नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे, है ना। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि भगवान ने हमें अपने फ्रेंड्स को चूज करने की पावर दी है, चॉइस हमारे पास है कि किसको हमने अपना फ्रेंड बनाना है, किससे हमने क्या बातें करनी है, ये हमारी चॉइस है ना, कि मुझे निंदा चुगली करनी है या नहीं करनी है ना। आपसे कोई मान लो निंदा चुगली करता भी रहता है, तो अगर आप 2-3 बार नहीं करोगे उसके साथ, आप उसकी बात को चेंज कर दोगे, किसी और टॉपिक पे लेकर जाओगे उसको, उसको सत्संग में जो आपने सीखा वो बातें समझा दो कि आज मैंने सत्संग से ये सीखा, यार देखो बहुत अच्छा सत्संग हुआ आज और मैंने ये सत्संग से ये सीखा, है ना। आप एक पहल कर लो उसको चेंज करने के लिए, है ना। तो भगवान ने हमें अपने फ्रेंड्स को चूज करने की पावर दी है, अपने थॉट्स को चूज करने की पावर दी है। हम चाहें तो हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, हम चाहें तो हम नेगेटिव सोच सकते हैं, ये हमारी चॉइस है ना। हम चाहें तो हमें गुस्सा करना है, हम चाहें तो हमें निंदा चुगली में पड़े रहना है, हम चाहें तो हम लालच कर सकते हैं, हम चाहें तो हम कंपैरिजन में पड़े रह सकते हैं। सारी मन की बातें है ना फ्रेंड्स। आप ये सोचो 99.9% हम सब लोग मन से दुखी हैं। जो दुख मिलते हैं हमें वो मन से मिलते हैं ना, और जो फिजिकल लेवल पे जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसको दर्द बोलते हैं, है ना। और अगर हम किसी चीजों से दुखी है ना, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो हम गलती कर रहे हैं। चलो फिजिकल लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स वो तो है ही है, ठीक से अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने खाने पीने में परहेज करें, है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिजिकल लेवल पे उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन 99.9% में तो हम मन से बीमार है। मन ने बोल दिया मैं दुखी हूं तो मैं दुखी हूं, और अपने आप को मन मान लेते हैं कि मैं तो मन हूं, मेरा अपना तो कोई अलग व्यक्तित्व है ही नहीं है। मन ने बोला खा लो तो मैं खा लेती हूं, मन ने बोला सो जाओ तो मैं सो जाती हूं, मन ने बोला निंदा चुगली कर लो तो मैं निंदा चुगली कर लेती हूं, मन ने बोला कि मैं शॉपिंग करनी है तो मैं शॉपिंग कर लेती हूं। इस तरह से चलते हैं फ्रेंड्स हम, और हमें ये पता ही नहीं है कि मन को हम अपना दोस्त भी बना सकते हैं और अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। तो अपने थॉट्स को चेंज करने की जिम्मेदारी हमारी है फ्रेंड्स। उसको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रखना है, ये हमारी चॉइस है। तो ये याद रखना है कि जो भी हमने यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा सीखा, सत्संग से सीखा, जो हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं वहां से सीखते हैं, अपने शास्त्र पढ़ते हैं वहां से सीखते हैं, तो हमें उनको जीवन में आचरण में लाने का प्रयास कर। तो धीरे धीरे जैसे ही आपने ये दो स्टेप्स करने शुरू कर दिए, तो फिर तीसरा स्टेप ऑटोमेटिक हो जाता है, अपने आप होगा वो। तीसरा स्टेप मतलब, पहला स्टेप मतलब विचार, विचार मतलब जो भी आपने कहीं से अच्छा पढ़ा, अच्छा सुना, अच्छा देखा, है ना। और दूसरा स्टेप उसको जो आपने इम्प्लीमेंट किया, जो भी आपको बातें अच्छी लग रही हैं आपने अप्लाई कर ली जीवन, तो उसको क्या बोलते हैं, आचार। पहला हो गया स्टेप विचार, और जिसको अगर आपने अप्लाई कर लिया उसको बोलते हैं आचार, है ना। तो जब आप ये दोनों चीजें करते हो ना, अच्छे से करना शुरू कर देते हो, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहला स्टेप को अच्छे से सुनना, गहराई से चीजों को समझना। तो अगर आपने पहले समझ लिया, फिर दूसरा आपने उसको चिंतन में लाना शुरू कर दिया, है ना, अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो तीसरा स्टेप ऑटोमेटिक हो जाता है फ्रेंड। तीसरा स्टेप मतलब प्रचार, प्रीचिंग। भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, अगर आप आचार और विचार अच्छे से करते हो ना, गहराई से सुनते हो, समझते हो, मनन करते हो, फिर अपनी निष्ठा से गहराई से उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हो। मान लीजिए आपने सोचा नाम जाप करना चाहिए, और आपने करना भी शुरू कर दिया, आपको करते करते 2-3 महीने हो गए जाप करते हुए, फिर कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा कि आपकी जो रिलेटिव्स हैं वो आपको पूछने शुरू हो जाएंगी, है ना, आपके घर में आपका बेटा, आपका हस्बैंड आपसे पूछेंगे कि ये क्यों करते हैं। जब आप कंटिन्यूसली आप करोगे 2-3 महीने, तो आपसे पूछने शुरू हो जाएंगे कि ये क्यों करते हैं। तो आप उनको थोड़ा सा बताओगे कि इससे मन शांत हो जाता है, इससे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, पढ़ाई में भी इसका फोकस बनता है, है ना, और जो हमने इतना कुछ अंदर घुसाया होता है, कितने सारे विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, है ना, विचारों और चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं फ्रेंड्स। जब हम भक्ति के रास्ते में चलते हैं, और जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें रिकमेंड की हैं अगर हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो इतना कुछ चलता रहता है ना, इतनी सारी चिंताएं, इतने सारे विचार, वो सब परसेंटेज में निकलना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो जो आपका बच्चा पहले आपकी बात नहीं सुनता था, लेकिन अब प्रभाव इतना पड़ जाएगा कि वो भी अगले दिन बात आपकी मानना शुरू हो जाएगा, माला करने शुरू हो जाएगा, है ना, आपके साथ भोग लगाने शुरू हो जाएगा, आपके साथ आरती करने शुरू हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों में हम ये बदलाव देख रहे हैं फ्रेंड्स। और ये प्रचार क्या मैं और आप कर सकते हैं फ्रेंड्स? सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा शक्ति से हार्ट ट्रांसफॉर्म होते हैं लोगों के फ्रेंड्स। और हमें गलत फहमी क्या हो जाती है कि ये मैंने कर दिया, है ना। भगवान की कृपा शक्ति का माध्यम वो बनता है फ्रेंड्स जो अपने पर प्रैक्टिस कर रहा है। जितने जितने हम अपने पे प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीजों को अप्लाई करते जाएंगे, उतनी उतनी भगवान की कृपा शक्ति बढ़ती जाती है। जिसने अपने विचारों को पक्का कर लिया और वो इम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ गया मतलब उसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, है ना। 100% नहीं होगा, पर उसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, मतलब कुछ भी सुना अगर उसने सत्संग में, मान लो 50% भी उसने अप्लाई करने शुरू कर दिया, तो अपने आप ही उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स आपको कोई अपना इम्पोर्टेंट काम करवाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख किसी को भिजवाने हैं, तो आप किसी रिलायबल व्यक्ति को बोलोगे ना, कोई सिंसियर कोई एम्प्लॉई होगा या कोई फ्रेंड होगी तो आप उसको बोलोगे ना, या किसी को भी थोड़ी पकड़ लोगे जो हमारा बिल्कुल क्लोज होगा, हम उसको बोलते हैं कि ये पैसे किसी को पकड़ाने हैं, है ना। तो प्रचार क्या होता है, देखो भगवान तो हमें अंदर से जानते हैं ना, भगवान हमें बाहर से कुछ असेस नहीं करते कि हम बाहर दुनियादारी में क्या कैसा जीवन जी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान हमें अंदर से जानते हैं, भगवान हमारे भाव को पढ़ते हैं, सिंपल है। और भगवान से कुछ छुपा नहीं है, भगवान के सीसीटीवी कैमराज हर जगह मौजूद है फ्रेंड्स। जहाँ पे हम गलत कर रहे होते हैं ना, अकेले में गलत सोच रहे होते हैं, अकेले में गलत बोल रहे होते हैं, भगवान वहां भी मौजूद होते हैं। तो भगवान अपना बड़ा ट्रस्टवर्दी काम, मतलब लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्म करना, लोगों की हेल्प करना, ये वाला काम कर रहे हैं भगवान। तो भगवान चूज किसको करेंगे, मतलब माध्यम किसको बनाएंगे भगवान, है ना। तो भगवान का ट्रस्ट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले स्टेप्स पे फोकस करना है हमें, विचार और आचार। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मेजोरिटी लोग ना सीधे ही शुरुआत प्रचार से करती है। अब एक हफ्ता नहीं हुआ होता सत्संग ज्वाइन किए और लोग क्या बोल रहे होते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ, मैं तो कोई गलती नहीं करती, मैं तो हमेशा अच्छा ही अच्छा करती हूँ, बट अपने हस्बैंड को कैसे इस रास्ते में लाऊं, अपने बेटे को अपनी बेटी को कैसे लाऊं इस रास्ते में। मतलब दूसरों को सुधारने में इतना फोकस है हमारा कि हम भूल जाते हैं कि दूसरे नहीं सुधरेंगे, दूसरे तभी सुधरेंगे फ्रेंड्स जब उनका टाइम आने वाला है। सत्संग कौन सुन रहा है, वो सत्संग नहीं सुन रहे हैं, है ना। मैं सत्संग सुन रही हूँ तो मेरा टाइम शायद आ गया है ना। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी अपने आप को सुधारने की है फ्रेंड्स। अगर इस बात को हमने गांठ बांध लिया कि आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है, तो हमें इसके लिए बाहर नहीं भागना है दूसरों को समझाने के लिए। वो ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटीज आएंगी फ्रेंड्स आपके पास, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे, है ना, उनमें बताई बातों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, गहराई से समझेंगे उन चीजों को, नोट्स बनाएंगे, तो क्या होता है फिर जो हमारी बुद्धि होती है ना, हमें उस दिशा में धक्का देगी, है ना। और अगर हमने पकड़ लिया कि नहीं यार गुस्सा करना बुरी बात होती है, निंदा करनी करना बुरी बात होती है, तो आपने उस थॉट को अगर पकड़ लिया ना, तो आप गुस्सा नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, आप निंदा नहीं कर पाओगे, आपको समझ आ जाएगी। आपको मतलब स्पेशल ये नहीं होगा कि एक महीने में एक बार याद आएगी, आपको दिन में 24 घंटे याद रहेगा कि नहीं यार निंदा करना बुरी बात है, गुस्सा करना बुरी बात है ना। गड़बड़ कहाँ होती है, हम बातों को ना ऊपर ऊपर से सुनते हैं। तो हमें क्या करना है, डीपली सुनना है, सिंसियरिटी से सुनना है, मनन करना है। अब पैसे कमाने की बात होगी ना, तो लोग बड़े ध्यान से बड़ी गहराई से चले जाएंगे उसके अंदर, लेकिन शास्त्र समझने की आत्म सुधार की बातें नहीं समझते लोग। अब किसी ने मान लो नेगेटिव कमेंट कर देते हमें कभी कोई लोग, तो हम जीवन भर ये बातें नहीं बोलते हैं उनकी, हम कभी नहीं छोड़ते ये बातें। लेकिन सत्संग में अगर कोई बात सुनी तो उसको क्या करते हैं, हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। करना क्या है, इस चीज को उल्टा करना है। अगर किसी ने आपको कमेंट मारा या क्रिटिसिज्म की बातें की, तो उसको एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मैं क्या करती हूँ जैसे मान लो किसी ने कोई कमेंट दिया या कोई क्रिटिसाइज की बात हुई, है ना, तो मैं पता क्या सोचती हूँ कि मेरे आगे ना एक पूरा मिरर है, वो बातें मेरे अंदर आएंगी नहीं। और सच में ऐसे ही होता है फ्रेंड, क्विक मेरे को सुनाई नहीं देती वो बातें। मैं सोच लिया कि मेरे आगे वो मिरर है, वो बातें मेरे अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो बातें अंदर आएंगी तो हम फिर नेगेटिव सोचेंगे दूसरे के बारे में, तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी हमारी। जब हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, फालतू बात ना सुननी है, ना बोलनी है, ना पढ़नी है, हम जो नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव बातें हमने घुसाई होती है ना अंदर अलग अलग प्रकार से, है ना। तो उल्टा करना है, जो कमेंट्स बजते हैं, जो क्रिटिसाइज होते हैं, ये सारी बातों को हमें एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना। लेकिन सत्संग की बातें हमारी बुद्धि के अंदर हर समय घूमनी चाहिए, हर समय जो बातें है ना, ये नहाते वक्त, खाना खाते वक्त, हर समय घूमती रहना चाहिए, हर वक्त घुसनी चाहिए ये बातें। तो ये होता है विचार। जब आप ऐसा करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आचार होता है फिर, है ना। जब आप सत्संग सुनते हो या फिर रिव्यूज में डिवोटीज आपसे शेयर कर रहे होते हैं चीजें, है ना, तो फिर क्या लगता है यार इनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो फिर मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, है ना। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स 3-4 साल की प्रैक्टिस से बदल रहे हैं। हमारे ग्रुप में जो लोग 3 साल से चले हुए हैं, 2020 से हमारा सत्संग स्टार्ट हुआ था, जुलाई 2020 से फर्स्ट रीडिंग ऑफ भगवद गीता स्टार्ट हुई थी हमारी, अब हमारी थर्ड रीडिंग स्टार्ट होने वाली है ना, तो बहुत लोगों में ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, जो हम बोलते हैं घर घर मंदिर हर मन मंदिर, सच में घर मंदिर बन रहे हैं। किया क्या, सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में चलने से। अगर हम सोचे कि नहीं नहीं मेरा हस्बैंड बदल जाए, मेरे इन लॉज बदल जाए, मेरे पेरेंट्स बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए और मैं तो बिल्कुल सही चल रही हूँ, फिर कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स। जब हम इस रास्ते में चलते हैं ना, सत्संग सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, तो अपने आप ही समझ आने लगता है कि यार कहाँ पे गलती हो रही है। और जब फिर दूसरों की गलतियों के लिए भी आपको स्ट्रांगली एक्ट करना पड़ता है ना, तो आप करते हो फिर वहां पे भी। ये नहीं कि सब कुछ अच्छा 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 ही होता है, कई बार आपको स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ता है दूसरों के साथ, तो आप तो वो भी कर पाते हो। फिर अपने साथ कई बार टफ होना पड़ता है ना, तो आप वो भी कर पाते हो। कहाँ पे मुझे अपने साथ रिजिड होना है, कहाँ पे मुझे अपने साथ सॉफ्ट होना है, वो सब बातें समझ आ जाती है ना। जो बात नहीं कर पाते थे वो पब्लिक स्पीकर बन गए हैं, है ना। तो कितनी बढ़िया बढ़िया चेंजेस आ रही हैं। जिन लोगों को लगता था कि समझ नहीं आती, वो आज भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। हमारे गोलोक एक्सप्रेस ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं, मतलब मैं अपना भी एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे लगता था मुझे तो भगवत गीता समझ ही नहीं आती, पढ़ाना तो फिर नेक्स्ट लेवल की बात है। जब निखिल जी ने मुझे कहा 2018 में, मुझे निखिल जी ने कहा कि मोना तुम भगवत गीता पढ़ाओ, मैंने बोला निखिल जी मुझे समझ नहीं आती है तो मैं पढ़ाना तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं पढ़ा सकती हूँ, है ना। मेरे मन में ये बात रहेगी कि मैं पढ़ा सकती हूँ। और मेरी फ्रेंड है नीना जी, अभी ग्रुप में भी है वो, नीना महाजन जी, है ना। तो मैं उनको बोलती रहती थी, 2017 में मैं जुड़ी थी गोलोक एक्सप्रेस से, भगवद गीता सुनना शुरू हुई थी, फर्स्ट रीडिंग मेरी 2017 में स्टार्ट हुई थी भगवद गीता की। तो मैं नीना जी को बोला कि आपको भी सुननी चाहिए भगवद गीता, तो नीना जी का यही आंसर होता था कि मोना मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, है ना। तो मेरे माइंड में बस ये बात रहेगी निखिल जी की, ये बात कि मैं भगवद गीता पढ़ा सकती हूँ, दूसरी बात ये कि नीना जी जब भी बोलेंगी मैं नीना जी को तो मैं ही पढ़ा दूंगी, है ना। तो 2020 में देखो जब लॉकडाउन था, तो नीना जी का एकदम कॉल आता है कि मोना मुझे भगवद गीता पढ़नी है। मैंने भगवद गीता पढ़नी है, क्योंकि मैं तो इनको दो तीन बार बोल के चुप हो गई थी कि नहीं इनको नहीं पढ़नी है शायद, है ना। तो इनका जब मुझे कॉल आता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे आंसर ही था कि तुम्हें तो मैं ही पढ़ा दूंगी। तो इसने बोला अच्छा आप मुझे पढ़ा, बोला मैं हाँ बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है तुम पढ़ाओगे फिर तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स थर्सडे फ्राइडे को हमारी बात हुई और हम ट्यूजडे से हम सत्संग करना शुरू हो गए थे। जुलाई 2020 से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज भी हम भगवान की कृपा से चल पा रहे हैं। और कहाँ पे मुझे लगता था कि मैं बोल नहीं पाती, है ना, मैं समझ नहीं पाती, बोलना तो छोड़ो मुझे समझ में नहीं आता था ये बातें, भगवद गीता की बातें सिर के ऊपर से जाती थी मेरे फ्रेंड। सुनना बहुत अच्छा लगता था, लगता पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में आ गए हम, मतलब बिल्कुल ही फ्रेश बातें, बिल्कुल ही डिफरेंट बातें जो हमने कभी की नहीं है, ऐसी बातें हम सुन रहे हैं, शांति मिल रही थी उन बातों को सुनने से, है ना। तो ये चेंजेस आती हैं फ्रेंड, है ना। ऐसा कैसे, मतलब कि आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कई आदतें मैं आपको अपना बताती हूँ, कई आदतें थी जैसे कि जो मैं छोड़ना चाहती थी, अपनी नेगेटिव हैबिट्स सबको पता होती है ना, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। गुस्से के संस्कार होते हैं हमें, है ना, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपको भगवद गीता पढ़ते हो, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, तो आप जो जो चीजें आप करना चाहते थे ना, वो आप कर पाते हो। और अपने आसपास के लोगों से जो आप एक्सपेक्ट करते हो, है ना, चीजें, तो जब आप चलते हो ना सही रास्ते पे, तो भगवान पहले, सबसे पहले आपको आपके आसपास का वातावरण आपको पॉजिटिव करना शुरू कर देते। जब भगवान को पूरा पक्का विश्वास हो जाता है ना कि आप उनके रास्ते पे चल रहे हो, सही के साथ चल रहे हो, तो भगवान हम सबको उन सब चीजों से निकाल देते हैं जहां जहां पे हम अटके होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो हमने कभी चाही थी कि हमारी लाइफ में होनी चाहिए, तो ऐसी ऐसी बातें भी होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। इसी को तो चमत्कार बोलते हैं, और क्या, यही तो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं। जो चीजें कोई नहीं कर सकता फ्रेंड्स, सच में वो परमात्मा करते हैं। ऐसे ऐसी चीजें करते हैं, बिना मांगे हमें सब कुछ देते हैं फ्रेंड्स। चीजें तो छोड़ो, ऐसी चीजें हमारी ठीक कर देते हैं जो हमने छोड़ दी होती है उम्मीद की ये चीज भी हमारी कभी ठीक होगी। तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी है, लेकिन हमें बस एक ही भगवान चीज मांगते हैं कि भाई तुम्हें सिंसियरिटी से इस रास्ते में चलना है और जो बातें बताई जा रही है उनको ठीक से फॉलो करना है, बिना किसी छल कपट के मेरे इस रास्ते पे चलना है। बस भगवान यही कहते हैं हमसे, है ना। तो अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा अपने आप ही हमारा बिहेवियर भी बदले। तो विचार और आचार, ये दो पर फोकस करो, थर्ड प्रचार के बारे में कुछ नहीं करना पड़ता, वो नेचुरल हो जाता है, वो करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाता है फ्रेंड्स। हम देखो 2020 में हम लोग, मैंने खाली नीना जी को पढ़ाना था, मैं और नीना जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी, और लॉकडाउन था तो उस दिन मेरे हस्बैंड घर में थे, लॉकडाउन था तो घर में वर्क फ्रॉम होम था। तो उसी दिन मैंने बताया इनको, जिस दिन सत्संग था, मैंने बोला हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि सत्संग सुन रही होगी ये भगवद गीता, मैंने नहीं, मैंने पढ़ाना है। तो मुझे भी वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि ठीक है मैं भी फ्री हूँ तो मेरे को भी ज्वाइन करवा दो, है ना। और नीना जी ने ममता जी से बात कर ली, तो इस तरह से हम चार लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई फ्रेंड्स। तो धीरे 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 देखो अपने आप ही प्रचार होता है, कोई आपको बोलना नहीं पड़ता किसी को, ऑटोमेटिकली जब आपको लगता है कि यार इस रास्ते में चलने से कितना मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, मेरे आसपास के लोगों के जीवन को बेनिफिट हो रहा है ना, तो क्यों ना मेरे आसपास मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाए। अगर एक घंटे की मेहनत से, एक घंटे की बातचीत से अगर कोई दूसरा परिवर्तित हो जाता है ना, भगवान के इस रास्ते में भगवान ने कहा भी है कि जो मेरा प्रचार प्रसार करता है भगवद गीता का मतलब, है ना, तो मैं उसको शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ, है ना। और ये रास्ता ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपने किया और आपने छोड़ दिया, ठीक है एक बार किताब पढ़ी तो आपने छोड़ दी, है ना। आपको नित्य निरंतर ये बातें अपने अंदर रखनी पड़ती है, बार बार पढ़नी पड़ती है ना, ये चीजें नेचुरल हो जाती है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो एक बार एक माँ ना महात्मा गांधी के पास जाती है अपने बच्चे को लेकर, है ना, अपने बच्चे को मिलाने के लिए लेकर जाती है। तो वो मदर कहती है महात्मा गांधी जी को कि ये बच्चा चीनी बहुत खाता है, प्लीज इसको समझाओ, है ना। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आप एक हफ्ते बाद आना। फिर वो हफ्ते बाद फिर आती है और बेटे को महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि बेटे चीनी मत खाया करो, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। वो सिर्फ इतनी लाइन बोलते हैं। तो जो मदर है वो बड़ी हैरान हो जाती है कि आप ये बात कल भी बोल सकते थे, आपने इसके लिए हमें आज क्यों बुलाया, है ना। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि पहले मुझे भी चीनी की लत लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा पहले मुझे भी चीनी की लत लगी थी तो मैं कैसे इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे ही हालात बुरे थे, इसलिए मैंने एक हफ्ता प्रैक्टिस की, मैंने चीनी खाना छोड़ी, तब प्रभु कृपा से मैं इसको बोल सकता हूँ आपके बेटे को कि आपको चीनी नहीं खानी चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ अब मैं ये बोलना, है ना। अब मैं डिजर्व करता हूँ ना, जो बातें मैंने अपने जीवन में उतार ली तो अब मैं डिजर्व करता हूँ ये बात किसी को समझाना, है ना। तो हम कहते हैं कि कोई सुनता ही नहीं है, हमारा बच्चा नहीं सुनता, हमारा भाई नहीं सुनता, मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो अगर ये बात सच होती तो क्या बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको कोई सुनता? लाखों करोड़ों लोग इनको सुनते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारे इंडिया में, लोग उनको सुन रहे हैं ना। सच ये है कि सब सुनते हैं फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि आपकी प्योरिटी का लेवल कितना है। सुनते सब है लेकिन अपनी बात को डिलीवर वो ही कर पाएगा जिसका प्योरिटी का लेवल बढ़ा हुआ होगा, और प्योरिटी का लेवल उसका बढ़ेगा जो आत्म मंथन करेगा, अपने विचारों के ऊपर प्रैक्टिस करेगा। और हमेशा सत्संग में यही बात बताई जाती है कि अगर आप क्लास फिफ्थ में हो तो आप क्लास थर्ड की हेल्प करो, है ना, अपने आसपास के लोगों को जितना आप समझा सकते हो, है ना, जो सुनना चाहता है उसको आप बता सकते हो, है ना। कुछ लोग आपकी नेचुरल हेल्प चाहेंगे, हो सकता है आपके घर में काम करने वाली हेल्पर को उसकी जरूरत है, लेकिन हमने फोकस क्या बना लिया होता है, मैं सिर्फ अपनी बहन की ही हेल्प करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। आप आपके मन के हिसाब से किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे भगवान, है ना, जो आपकी हेल्प लेने को तैयार हम्बल होकर बैठे हुए हैं, है ना। तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, चॉइस ए कि जो आपकी हेल्प लेने को तैयार, जो विनम्र है, चॉइस बी जिसे आप हेल्प करना चाहते हो, है ना, चॉइस ए की मतलब जो आपकी हेल्प लेने को तैयार, आपकी हर बात सुनने को तैयार है, तो जरूरी नहीं है ना कि वो फैमिली मेंबर्स हो, और चॉइस बी जिसे आप हेल्प करना चाहते हो और वो मैक्सिमम आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना, जो सुनने को तैयार है, हमें उसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए, है ना। हमें तो लगता है कि हम अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को समझाएं, लेकिन उनका मन ही नहीं है अभी, है ना। आपकी एनर्जी बहुत सारी लगनी है उधर, लेकिन उस व्यक्ति ने आगे नहीं बढ़ना है। बहुत सारी एनर्जी आप लगा लोगे लेकिन एंड में कुछ मिलना नहीं है, है ना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत मोह होता है फ्रेंड्स, अटैचमेंट्स होती है, विचार आचार किया नहीं होता है तो हमें तीन चार परिवार वाले ही सब कुछ लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी तरह उन्हें सुधार लें और अपना जीवन सही कर लें। उनको क्यों सुधार लें? ताकि हमारा जीवन कंफर्टेबल हो जाए, और सारा जोर हम वहां पे लगा देते हैं क्योंकि खुद को हम सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे जोर लगता है, और हमें ये समझ नहीं होती कि हम किसी को नहीं सुधार सकते फ्रेंड्स, है ना। ये तो भगवान की विशेष कृपा होती है, किसी का टाइम आता है तो फिर वो सही रास्ते पे चलता है फ्रेंड्स। भगवान की सच में विशेष कृपा होती है कि उनको इस टाइप के सत्संग मिलते हैं, भगवद गीता सुनते हैं वो लोग, है ना। तो क्या इसका मतलब है कि हम किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते? कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। बट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब आप विचार आचार करोगे तो आपका मोह हटेगा, आपको समझ आएगा मुझे करना क्या है, आप सोचोगे, आप करुणा में आओगे कि ये सारा जगत ही ईश्वर का है। फिर वो लोग भी दिखेंगे जो आपकी हेल्प लेने को तैयार है। लेकिन आपने अपनी अटैचमेंट्स हैं, अपनी अटेंशन है जो वो दो चार लोगों पर लगा रखी थी, है ना, आप अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर चुके थे उन दो चार लोगों को समझाने के लिए जो आपकी हेल्प लेने को तैयार नहीं थे, है ना, और जो आपकी हेल्प लेने को तैयार थे आपका ध्यान ही नहीं था उसकी तरफ। तो प्रचार और सेवा का मौका सबको मिल रहा होता है ना, लेकिन हमारा ध्यान अपनी अटैचमेंट पर बेस्ड उन तीन चार लोगों पर ही होता है ना। भक्ति का मतलब ये नहीं है, है ना, भक्ति का मतलब होता है पूरे समाज को अपना परिवार समझना। समझा था हमने कल के टॉपिक में, हम किसी को भी नहीं बदल पाएंगे फ्रेंड्स, सिर्फ भगवान ही बदल पाते हैं। और अगर आपने विचार आचार कर लिया तो भी क्या आप सबको बदल पाओगे? अब जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, क्या सब लोग उनको सुनते हैं? क्या वो सभी को बदल पाते हैं? करोड़ों लोग बदल रहे हैं उनके माध्यम से, बट सबको नहीं बदल पाते ना। भगवान के आने पर भी सारे नहीं बदल पाए ना फ्रेंड्स। आप देखो भगवान श्री राम के आने पर क्या सब भगवान श्री राम के रास्ते पे चल रहे थे क्या, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण आए इस धरती पर तो पांडव वाले साइड के लोग तो कम ही थे और कौरवों की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी फ्रेंड्स, पांडवों की सेना के मुकाबले में। तब नहीं बदलेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपको भगवान की कृपा से सद्बुद्धि आ जाएगी, ये दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन लोग हम्बल है, आप उनको गाइड कर पाओगे। जो लोग एरोगेंट है, नहीं सुनना चाहते हैं हम लोगों को, तो हम उनके लिए भी प्रेयर्स करना शुरू कर देते हैं, है ना, करते ही है ना प्रेयर्स। जो नहीं हमारी रास्ते में चलना चाहते, नहीं हमारी बात सुनना चाहते, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको भी अपने रास्ते में चलाओ, जो सुख का जो शांति का अनुभव मैं कर रही हूँ इनके जीवन में भी वो आए, है ना। तो टाइम बहुत कम होता है फ्रेंड्स हम लोगों के पास, कोई इतना बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम हमने वेस्ट किया हुआ है ना। तो आपको अपनी एनर्जी को सिलेक्टिव होकर यूज करना आ जाएगा प्रचार के कंपोनेंट में, आपको समझ आ जाएगा मुझे प्रचार कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले विचार आचार जरूरी है करना। परमात्मा सिक्स सेंस देते हैं अंदर से आपको दिखना शुरू हो जाता है कि किन लोगों को किस तरह से और कितना बताया जाए उनकी प्रगति के लिए, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, कैसे बताना है और कितना बताना है, ये सब पता चल जाएगा। मतलब दवाई की डोज कौन सी देनी है, कितनी देनी है और किस पर्सन को देनी है ना, ये सारी बातें भगवत गीता से आपके पास अपने आप रिवील हो जाती है। जब आप भगवत गीता की टीचिंग्स पढ़ोगे तो सब बातें आपको अपने आप ही समझना शुरू हो जाएंगी, प्रकाशित हो जाते हो आप अंदर से। करना क्या है, हमें सिर्फ विचार आचार इन दो बातों पे फोकस करना है। ये करते रहोगे तो नेचुरली आपके पास जो सेवा की अपॉर्चुनिटी आएगी वो अपने आप आएगी, है ना। तो ये मॉडल हमने आज डिटेल में समझा, विचार आचार और प्रचार का। तो फ्रेंड्स बातें वही हैं जो आपको पहले भी पता है, जो सबको पता होती है। सबको पता होता है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह लालच, हमें इन सब बातों से बचना है। बचपन से बातें हमने सीखी होती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। किसको नहीं पता, सबको पता होता है, सब बातें सब बताते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दूसरों को बताते हैं ये करो ये मत करो, लेकिन इसका असर नहीं होता, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि कोई सुनता नहीं है हमारी बात। लेकिन जब हम पर्टिकुलर विचार को पकड़कर आचरण करना शुरू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर भगवान आपको अपने आप ही मौका देंगे, है ना। फिर आप जब बात अपनी डिलीवर करोगे ना, तो फिर अपने आप ही देखना आप हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे दूसरों के। पहले अपना हार्ट ट्रांसफॉर्म करना है ना, है ना। अगर मैं बीमार हूं तो पहले दवाई मुझे खुद खानी है ना। अगर मैं बीमार मैं हूं और दवाई मुझे अपने बच्चे को खिलानी है, तो वो मेरी बीमारी पे थोड़ी वर्क करेगी, है ना। तो पहले मेडिसिन मुझे खानी है हरि नाम की, भगवान के नाम की, वो टीचिंग्स खुद घुसानी है अपने अंदर। पहले अपना हार्ट ट्रांसफॉर्म करना है, फिर दूसरों को हम कर पाते हैं, है ना। तब हमें अंदर ताकत आती है, हम दूसरों को समझा पाते हैं, है ना। इसलिए जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनकी बात कितनी पावरफुल होती है, सब लोग उनकी बात सुनते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है भाई इस रास्ते में। बहुत टाइम देते हैं वो लोग इन चीजों में, ऐसा थोड़ी वो सीधा बोलने लग जाते हैं और हम सुनते रहते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ऐसे लोग। तो जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतने ही बेटर आप ह्यूमन बींग बन सकते हो फ्रेंड्स, है ना। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बदल लूं, मैं अपने हस्बैंड को बदल लूं, मैं अपने इन-लॉज को बदल लूं, मैं अपने पेरेंट्स को बदल लूं, और हम बात क्या करते हैं, मैं तो ठीक हूं लेकिन मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे इन-लॉज को काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। हमें उनसे ज्यादा जरूरत है बदलने की. हम अपने फैमिली मेंबर्स को ज्यादा अच्छा तब ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं जब हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे अच्छा काम कर रहे होंगे. तो हर व्यक्ति का एक दायरा होता है ना, 10-15 लोगों का एक दायरा होता है. तो वो जो दायरा है ना वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है ना. तो जो हम बोल रहे होते हैं ना वो दायरा उसको नहीं देख रहा होता है. जो हम कर रहे होते हैं ना वो दायरा उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है. जब हम इस रास्ते में चलते हैं, भक्ति के रास्ते में, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, है ना, जब हमारे में परिवर्तन आता है तो हमें देखकर, मतलब एक दो साल जब हम इस रास्ते पे चल लेते हैं ना तो अपने आप ही दूसरों ने तो फ्रेंड्स बदलना ही बदलना है. वो घर का वातावरण ही बदल जाता है, है ना. और इसमें सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार आपकी हेल्प करेंगे. जब आपके जीवन में ये बातें उतरने शुरू हो जाएंगी ना तो ऑटोमेटिकली प्रचार आप कर पाओगे, है ना, आपकी बात की वैल्यू आ जाएगी, है ना. जब हम इस रास्ते में चलते हैं, परमात्मा के रास्ते में चलते हैं, सही चीजों को करने में जोर लगाते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी बात की वैल्यू बढ़ जाती है और फिर प्रचार तो होना ही होना है. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरि बोल. तो फ्रेंड्स आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स. हरि बोल.
हाँ हरी हरी बोल मोनदी एंड एवरीवन ऑफ द ग्रुप. आज जो आप सत्संग करा रहे हैं सदा फोर पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें उसके आगे जो क्लासिफिकेशन है कि ये जो सदाचार है वो किससे बनता है, विचार, आचार और प्रचार से. जो विचार, जो पहला फर्स्ट वन विचार, वो क्या है, जब हम अपने व्यवहार का आत्मचिंतन करते हैं तो वह विचार कहा जाता है. हमारे किसी विषय को लेकर हमारे थॉट क्या है, जब हम उसको अपने और हम उसको अपने जीवन में उतारते कैसे हैं, इसके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हमें इन बातों का मंथन करते हुए अच्छी बातों का जीवन में अपनाने का प्रयास करते रहना चाहिए. सत्संग द्वारा हमें अपने व्यवहार में जो विकार है वो पता लगने लग जाते हैं और उनमें उनको कैसे रोका जाता है या उनको कैसे काबू किया जाएगा या कैसे उनमें सुधार लाना है. ऐसे विचारों का जब हम मंथन करते रहते हैं तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट होता है और कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ये जो है ना, हम इसको कुछ ना कुछ हम अपने जब जीवन में अप्लाई करते हैं ना तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ तो चेंज आती है ना, सुधार आता ही है. और सेकंड जो है आचार. आचार क्या होता है, जब हम अपने विचारों को व्यवहार में लाते हैं ना, आचरण में लाते हैं तो वह आचार है. यानी आचार वह व्यवहार है जो जिसे हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं. जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को समझने और अपनाने की चॉइस तो हमारी है. हमें क्या अच्छा लगता है और क्या अपनाना है ये अधिकार भी तो हमारा ही है ना. तो हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार में ना अच्छी बातों को ऐड करते रहना चाहिए. जब हम अच्छी बातों को ऐड करते रहेंगे ना तो हमारे जो व्यवहार में भी ना शुद्धता और जो है ना ग्रेटनेस आती जाएगी. और तीसरा जो कंपोनेंट है ना प्रचार. प्रचार क्या है, कम्युनिकेशन है. जब हम अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करके उन्हें अपने आचरण में ले आते हैं तो हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम उन विचारों को दूसरों में भी कम्युनिकेट करने के लायक हो जाते हैं. जैसे कहते हैं ना, जब हमारे आचार व्यवहार आचार अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है तो जो इसका प्रचार है ना वो घर बैठे ही हो जाता है, है ना. और श्री हरि भी हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम अच्छी बातों को दूसरों को समझाने में बताने में सक्षम हो जाते हैं श्री हरि की कृपा से. हरी हरी बोल.
हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज कुमार जी. ब्यूटीफुली आपने पूरे टॉपिक को, विचार, आचार, प्रचार, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करवा दिया सबको. और देखो इस रास्ते में चलने से ना, मैं पता क्या सोचती थी, मैंने सोचा ठीक है भगवद गीता तो पढ़नी है, इसमें क्या हो गया. और मुझे ना जब 2017 में मैं जुड़ी तो मुझे लगता था कि भगवद गीता सिंपल मुझे पढ़नी है. मेरे मन में रहता था कि सब लोग पढ़ते हैं और हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, हिंदू लोग मतलब, मैं को लगता था कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम करते कुछ नहीं है. हमें अपने स्क्रिप्चर्स, पता नहीं क्यों मेरे मन में था स्क्रिप्चर्स अपने पढ़ने ही चाहिए, पढ़ने चाहिए. तो मैं सिर्फ इसलिए जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या प्रोसेस है क्या नहीं. मेरे को तो था जैसे आम सत्संग है, जैसे कि हम मंदिरों में या किसी घर जाके सुनते हैं, है ना. तो मतलब कि ऐसा हम सोचते हैं कि इस तरह का सत्संग होगा, है ना. लेकिन जब हम सिंसियरिटी से सुनने लगते हैं, नोट्स बनाते हैं, मैं इसलिए आपको बार बार बोलती हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि उसमें हम ना मतलब एक माइंड में बात आ जाती है कि यार मुझे सच्ची में सिंसियरिटी से सुनना है जो बोल रहे हैं, है ना. तो उनके जीवन इतना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मैं मेरी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई कॉपी पेन लिया करो, नया रजिस्टर ले लो एक, है ना, जिससे आप भगवद गीता के श्लोक जो अच्छे से उनके पॉइंट्स बना सकते हो, है ना, या आप वीडियो देख के उनके नोट्स बनाने शुरू कर सकते हो। तो आपको आपको पता क्या होता है, जो जो हमारा पुरानी कंडीशनिंग है ना, जो बचपन से हुई हुई है हमारी, अपने परिवार से होती है ना कंडीशनिंग, अपने माहौल से लेकर जो अपने आसपास के वातावरण से होती है ना, तो वो कंडीशनिंग कैसे बदलेगी, हमारी लाइफ में कुछ और नई चीजें ऐड होंगी, है ना। जब हम डिवाइन से जुड़ते हैं और ये परमात्मा से जुड़ना, जो भी फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें बताई जाती है, रिकमेंड की जाती थी गोलोक एक्सप्रेस में, वो हम करते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली ये मॉडल ही इस तरह से बनाया हुआ है कि भाई आप सुनो और फिर जो ये चीजें बताई जा रही हैं आपकी, है ना, पहले तो ये चीजें माइंड से इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है ना, कि माइंड में ऐसा करना है, अच्छा किसी के बारे सोचना नहीं है गलत, अच्छा मुझे ऐसा करना है, ये चीजें सोचना बहुत डिफिकल्ट है, लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ना फ्रेंड्स, भगवान के साथ जुड़ते हैं और ये बातें सुनते नित्य रहे अंदर, बार 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 अंदर हथौड़े की तरह अंदर चलती है ना, बार बार सुनते हैं, क्योंकि पहले तो कंडीशनिंग है, सुनी नहीं है बातें, पहले तो कुछ और तरह की बातें सुनते रहते हैं हम, लेकिन जब ये भगवान की बातें अंदर घुसती हैं, फिर हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपने आप ही अंदर मंथन होने शुरू हो जाता है, तो अपने आप ही जो विष है वो निकलता है और जो भगवान की बातों का जो अमृत है वो अंदर भरता जाता है, तो फिर लाइफ में ट्रांसफॉर्म तो होना ही होना है। लेकिन कोई बात है कि चलना सिंसियरिटी से है और इम्प्लीमेंट करना है ना। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ जी, अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल मुनदी, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग भी हमेशा की तरह बहुत डिवाइन था, वंडरफुल था, आज भी आई ओपन सत्संग था, अंदर की मतलब कोई एक बात है कि पुश करते रहना चाहिए हमें खुद को। आज के सत्संग कुल मिला के जितना मुझे भी समझ आया, मेरी लर्निंग बनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हमें खुद को देखना है, खुद में झांकना है। हम दूसरों को सुधारने तो चल पड़ते हैं, दूसरों की गलतियां, जब हम अभी भागवत के स्टूडेंट हैं तो तब भी हमें माइंड हो रहा है किसी की बात कमेंट, तो हम ये फिर भी नहीं सोच पा रहे हो, मैं अपनी बात करूं तो नहीं सोच पाते कि उसने बोला, सामने वाला कुछ बोल रहा है या कमेंट है या कुछ भी कर रहा है, तो वो तो भागवत का स्टूडेंट नहीं है, उसको तो इतनी समझ नहीं है, वो सत्संग नहीं सुनता, बट हम तो सुनते हैं, फिर हम रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। तो वही बात आ गई कि खुद के अंदर नहीं जान रहे हैं कि हम इतने साल से जुड़े हुए हैं, थर्ड रीडिंग होने जा रही है, फिर भी क्यों ये बात अंदर चुभ रही है, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो ना विचार करते हैं और ना आचार में लगाते हैं। अगर लाएं सारा दिन विचार करें कि ये बोला गया, एक बात पकड़ लें कि गुस्सा नहीं करना भाई, तो सारा दिन उसी को याद रखें, तो फिर आत्म सुधार खुद हो जाएगा, विचार भी हो जाएगा और सत्संग सुनने का फायदा भी, बेनिफिट भी तब मिलेंगे, तब हमें एक्सपीरियंस भी होते हैं। और एक बात मैं और कहूंगी दी, देखो मैं कहीं भी गई तो मेरे मन को ऐसे ढेस लगी, मैं सत्संग के माध्यम से जितने हम जुड़े हैं, मुझे तो सबको सुन के रिव्यू ही सुनती हूँ तो अच्छे लगते हैं, तो मैं अपनी बात कह रही हूँ कि देखो वृद्ध आश्रम में या मैं कहीं भी गई तो आजकल माँ बाप दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कि हम लोग उनको रखते नहीं है घर में। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम अपने कम से कम बच्चों को या खुद तो ऐसे बन जाएं कि वो किसी के सामने हमारे लिए ना रोएं। हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि भाई हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वो बुरा नहीं। हमें अपने बच्चों को सिखाना ये है कि भाई आपके लिए सब अच्छे हैं, हम बड़े हैं और जो और अप एंड डाउन आते रहते हैं तो उसमें हमें स्टेबल रहना। अगर हम सत्संग से जुड़ेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, तो मेरी कल से मेरी बात मन में चल रही थी कि मैंने या पर्सनली दी को बोलना है या बोलो या मैंने रिव्यू में करना है, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला तो आई एम सॉरी। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज किरण जी, ब्यूटीफुली आपने भी पूरा सत्संग को अच्छे से समराइज कर दिया, और जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि बिल्कुल हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं आगे, है ना, तो उसी के लिए तो है सत्संग, हमें समझ आएगा कि भाई हमें करना क्या है। हमें लगता है कि हमें करना पड़ता है काम, हम कुछ भी करते हैं बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए भी कुछ करते हैं तो हमें लगता है हमें करना पड़ता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कंफर्टेबल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं एक्चुअली, कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। और तो क्या कंफर्टेबल होती है लाइफ, क्या सब गलत चीजें करके कभी भी कंफर्टेबल लाइफ होनी नहीं वाली है। कंफर्टेबल लाइफ तभी होगी जब हम सही चीजें करना शुरू कर देंगे फ्रेंड। माइंड ने तभी स्टेबल होना है जब हम सही चीजें करते हैं, जब हम सही के साथ खड़े होते हैं ना, जब हम ये सब चीजें जब सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और संस्कार देंगे बच्चों को, तब लाइफ बेटर होगी ना। जो हम खुद सीखेंगे, जब पहले खुद अप्लाई करेंगे तो हमारे आचरण से अपने आप हमारे बच्चे सीखेंगे, उसके लिए हमें बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे हमारे आचरण से सीखते। बच्चों की अपब्रिंगिंग भी वैसे ही करते हैं ना बचपन से, उनके माइंड को भी ऐसे कचरे से भर देते हैं। मैं अपना पर्सनल तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि देखो कुछ भी नहीं लाए थे हम, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है ना। इस बीच के जो जीवन को है ना उसको हमें बेस्ट वे में जीना, उसमें अपना अपना पराया पराया नहीं करके जाना है ना। मतलब कि कुछ डिफरेंट करो ना, जो सारी दुनिया खड़ी है और आप सच के साथ खड़े हो, मजा तो तब है जीने का। तो मैक्सिमम लोग भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, झूठ के साथ सब लोग खड़े होंगे, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि आप सच में आप अकेले होते हो, सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि परमात्मा मेरे साथ है ना। तो हमें हमेशा सच के साथ, सही के साथ खड़े होना है। और जो सत्संग में बताई जा रही है बातें उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों को तो संस्कार मिलने ही मिलने हैं ना। ऑटोमेटिकली हम एक अच्छे समाज में एक अच्छा योगदान दे पाएंगे ना, जब हम अपने से बेटर अपने बच्चों को मतलब संस्कार दे पाए। चीजें तो हम बहुत देना चाहते हैं बच्चों को कि मेरे को जीवन में क्या क्या नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन हम भूल जाते हैं इस सारे प्रोसेस में कि अगर एक बच्चा अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा तो वो अपने लिए बेटर सब कुछ कर ही लेगा। इस बीच में हम सारे अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, पता ही नहीं होता हमें करना क्या है लाइफ में। हम अपना जीवन तो हेल बनाते ही बनाते हैं, साथ में हम बच्चों को भी कोई अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं दे पाते हैं, है ना। इसलिए हमें ये जो दोस्त दुश्मन हमने बनाए होते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना है। इस सिर्फ बोलने की बातें नहीं, अगर हम माइंड में रख लेंगे ना ये बातें तो फ्रेंड सच में इंप्लीमेंट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोच नहीं पाते, थॉट रख लिया है ना, जैसे गिरिन जी ने बोला है कि थॉट रख लिया कि मुझे गुस्सा नहीं करना है या मुझे निंदा चुगली नहीं करनी है ना। तो माइंड में थॉट रख लिया कि भाई मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ मुझे चले जाना है, तो इस दुनिया में मुझे किसी के साथ नहीं द्वेष भाव रखना है। कम से कम अंदर से तो छोड़ो, पहले अंदर से छोड़ो कि बाहर से अपने आप ऑटोमेटिकली आप वही दुनिया को प्रेजेंट करोगे जो आप अंदर से हो। अंदर से बहुत ज्यादा द्वेष है, गुस्सा भरा पड़ा है दूसरों के लिए, तो आप दूसरों के साथ अच्छी बात, अच्छी वाइब्रेशन जाती ही नहीं है ना। वो आपको लगता है कि नहीं नहीं मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ बोला, अरे वो वाइब्रेशन आपकी जाती है और ये बात हम समझते नहीं है। आप अंदर से जो सोच रहे हो ना वो वाइब्रेशन दूसरों तक जा रही है, आप जो बोल रहे हो वो वाली वाइब्रेशन नहीं जा रही होती है ना। तो अगर आप अंदर से सही सोचना शुरू कर देते हो ना तो ऑटोमेटिकली चीजों ने सही होना ही होना है ना। भगवद गीता में मैंने देखा बहुत पावर है ना, तो अगर हम उसको सिंसियरिटी से सुने तो हम अपना जीवन बढ़िया बना सकते हैं, अपने बच्चों का जीवन बेटर कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच किरण जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। भजन के गान आज नीना जी की है। नीना जी आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। मोना जी सच में आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन और आई ओपनिंग रहा। आपने बड़े अच्छे से आचार विचार और प्रचार ये टॉपिक हमें कराया। तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूंगी कि इसके लिए हम गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी और अपनी मेंटर मोना जी के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभारी हैं कि हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम अपने बारे में आत्म मंथन कर रहे हैं, अपने मतलब सेल्फ फोकस की ओर हमारा ध्यान बढ़ा है और हमने अपने आप में चेंजेस लानी भी शुरू करी है। क्योंकि भगवान ने गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी और मोना जी को हमारा माध्यम बनाया और इनके माध्यम से हमने भगवद गीता पढ़ी और हमारे में जो है हमारे मन के विकार धीरे धीरे मतलब समाप्त होने शुरू हुए और हमारे अंदर जो है डिवाइन क्वालिटीज जो हर इंसान में है क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो उसको हमने धीरे धीरे पहचानना शुरू किया और हमें यही रास्ता अच्छा लगा कि हमें बस अब इस ओर ही बढ़ना है। तो आज का टॉपिक मोना जी बहुत ही अच्छा था। तो सच में आपने बड़े अच्छे से हमें ये टॉपिक समझाया और प्रभु श्री हरि से मेरी यही प्रार्थना है कि हम इस रास्ते पे यूं ही चलते रहें। जैसे कि मोना जी ने बताया कि हम जब सही रास्ते पर चलेंगे, अपने व्यवहार में चेंजेस लाएंगे, अपना आत्म मंथन करेंगे, तो जो है सदाचार जो हमारा आचरण है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और मतलब जब लोग देखेंगे कि इनमें चेंजेस आई है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्रचार होना शुरू हो जाएगा। तो मनोज जी हमेशा की तरह आपका आज का सत्संग भी बहुत ही आनंदमय रहा। हरी बोल। हाँ जी, तो आज मैं मेरी भजन की टर्न है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ आज भोले शंकर का शिवाष्टक स्त्रोत शेयर कर रही हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर जय गंग
गंगाधर करुणा कर करतार हर। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय उमाकार हरे। पार्वती शिव हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैजनाथ जय केदार हरे। मल्लिका अर्जुन जय सोमनाथ जय महाकालेश्वर ओंकार हर। त्र्यंबकेश्वर जय भुवनेश्वर जय भीम शंकर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय आधार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती शिव हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे। पाही पाही दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नाश शिव शंभु। विपद विदारण उदन उदारण संत सनातन शिव शंभु। सहज वचन हर जल जल जलवर धवल चिरंतन शिव शंभु। पद्म के पाप हरन तम चरण मनन तम शिव शंभु। विश्वन चावरूप अलंकरम जग के मूलाधार हरि। जग के मूलाधार हरि। पार्वती शिव हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे। भोलेनाथ कृपालु दयामय ओढ़र दानी शिव योगी। निमित मात्र में देते हैं सब निधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकत कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्व वस्त्र लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जय मनोरंजन पर शिव ओमाकार हरि। पार्वती शिव हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे। पार्वती शिव हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे। आशुतोष इस मोहमय निद्रा से मुझे तुम जगा देना। विश्व वेदना से विश्व की माया असीम छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त करा देना। दिव्य ज्ञान के भंडार से युगल चरणों की लगन लगा देना। युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार मेरे मन मंदिर में की जो पद संचार हरि। पार्वती शिव हर हर शंभु पाही पाही दातार हरि। पाही पाही दातार हरि। दानी हो तो दो भिक्षा में अपनी अनुपायनी भक्ति प्रभु दानी हूँ तो दो भिक्षा में अपनी अनुपायनी भक्ति प्रभु शक्तिवान हूँ तो दो अविचल निज काम प्रेम की भक्ति प्रभु त्यागी हूँ तू दो इस सारे संसार से गुड़ विरक्ति प्रभु परम पिता हूँ तू दो अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु स्वामी हूँ तू निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे पार्वती शिव हर हर शंभु पार्वती शिव हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे तुम बिन व्याकुल हूँ परमेश्वर तुम बिन व्याकुल हूँ परमेश्वर आ जाओ भगवंत हरे आ जाओ भगवंत हरे करुणा चरण शरण में बंदे है उमार मन कांत हरे विरह व्यक्ति हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयाल अनंत हरे विरह व्यक्ति हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयाल अनंत हरे आओ एक टुक मेरे हो जाओ आ जाओ अभिन्न हरे आ जाओ अभिन्न हरे मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे पार्वती शिव हर हर शंभु पाई पाई दातार हरे
हर हर शंभु हर हर महादेव
हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर आपने शिव अष्टकम गाया नीना जी, बहुत ही आनंद आया हमें, बहुत ही भाव से गाया आपने, थैंक यू सो मच नीना जी। हाँ जी फ्रेंड्स, अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल, कर कर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन। जय श्री राधे कृष्णा।